Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ऐसे आपको मालूम पड़ा कि सब कुछ सोना है और सारा जो सोना है ना एक क्वालिटी का अच्छा मानो कोई अच्छा क्वालिटी का हो और कोई अच्छा क्वालिटी का ना हो तो आप क्या बोलोगे भैया ये हमको चाहिए ये नहीं चाहिए इसकी क्वालिटी थोड़ी अंतर है लेकिन एक क्वालिटी हो सबकी एक क्वालिटी तो अरे तो आपके मन में उसको ग्रहण और त्याग की इच्छा नहीं रहती है फिर ऐसे आत्मना पुरितम विश्वम आपको मालूम पड़ा ये सारी दुनिया भगवान है परमात्मा आत्म तत्व है अब आप किसको लेंगे किसको छोड़ेंगे आपके मन में ऐसा नहीं होता कि इसको ले लूं और इसको छोड़ूं ऐसा नहीं है कि कोई कम परमात्मा हो और कोई ज्यादा परमात्मा हो आदमी में ज्यादा परमात्मा होगा और वो जानवर में कम परमात्मा होगा ऐसा है क्या चींटी में कम परमात्मा होगा क्योंकि वो चींटी है और आप में ज्यादा परमात्मा होगा क्योंकि आप आदमी हैं ऐसा नहीं होता है चाहे आप चींटी हो चाहे आप आदमी हो दोनों में परमात्मा बराबर है न कम न ज्यादा और उस क्वालिटी में भी अंतर नहीं है इसलिए कहते हैं अहम जाए कहां ले कहां कौन सी वस्तु ग्रहण करे कौन सी वस्तु त्याग करे बोले सारी चीजें आत्मा हो गई आत्मना पुरितम विश्वम महाकल्पाम मुनाय था इसलिए ज्ञानी पुरुष के मन में न कहीं जाने की इच्छा है और न कहीं आने की इच्छा है यहां श्रुति कहती है तयोर ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति जो ज्ञानी पुरुष है वो जान लेता है कि मैं हूं और उसका जो अस्तित्व है ना वो दुनिया के शरीर आदि पदार्थों से जोड़ के नहीं होता है वो अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूं शरीर से अलग हूं और ये मालूम होने के बाद फिर वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है वो कभी मरता नहीं है वो व्यापक भाव को प्राप्त हो जाता है वो अनुभव करता है कि मैं अंदर भी हूं मैं बाहर भी हूं वो अनुभव करता है कि मैं शरीर के अंदर भी हूं और मैं शरीर के बाहर भी हूं और ये सचमुच अनुभव होता है आप ये मत सोचिएगा कि केवल ये ज्ञानात्मक चीजें हैं केवल सुनने की चीजें हैं केवल बोलने की चीजें हैं केवल विचार करने की चीजें हैं ऐसा नहीं है ये अनुभव करते हैं साधक लोग अनुभव करते हैं मैं अंदर हूं मैं शरीर के बाहर भी हूं मनुरहम सूर्यश्च वामदेव जी महाराज अपने पेट में अनुभव करने लगे मां के गर्भ में थे और उसी समय उनको ज्ञान हुआ और अनुभव कर रहे थे मैं मनु हूं मैं सूर्य हूं अब वो अनुभव कर रहे थे कि मैं मनु मैं सूर्य तो मनु शरीर में है कि शरीर के बाहर है मैं वो तो बहुत मनु सूर्य और चंद्रमा बहुत दूर की चीजें हैं बहुत दूर देश में और वो तो पेट के अंदर है उनको तो ये बोलना चाहिए था कि मैं मां के पेट में हूं ऐसा बोलना चाहिए था लेकिन वो नहीं बोल रहे थे मैं सूर्य हूं माने मैं अंदर भी हूं और मैं बाहर भी हूं कितना बाहर अरे बहुत दूर तक जहां तक दूरी की कल्पना आप कर सकते हैं वहां तक मैं हूं और जहां तक आप काल की कल्पना कर सकते हैं वहां तक मैं हूं अरे ये दोनों चीजें तो अपने में ही कल्पित हैं अच्छा देश में आप हैं कि आप में देश हैं आप वेदांत के सिद्धांत के दृष्टि से आप चलो थोड़ा ये सारी चीजें तो वेदांत के सिद्धांत से ही है लेकिन आपके बहुत सारी चरम सीमा की जो सैद्धांतिक बातें हैं जो चरम सिद्धांत है वेदांत का जिसको साधकों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए आप काल में हैं कि आपके अंदर काल है आप देश में हैं कि आपके अंदर देश है आप स्वयं वस्तु हैं कि वस्तु के अंदर आप हैं आप तो वेदांत में ज्ञान के दृष्टि से ये काल भी आपके अंदर है ये काल भी तो कल्पना है ना, आपके अंदर है, आप आत्मा है तो काल आपके अंदर है कि काल में आप हैं? जब आप आत्मा है तो व्यापक हैं, और व्यापक है तो आपके अंदर सारी चीजें हैं, तो काल भी आपके अंदर है और वो देश भी आपके अंदर है। परमात्मा, चलो आत्मा, आत्मा की जगह पर हम परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। परमात्मा व्यापक है, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, वो आकाश की तरह सर्वगत हैं, सर्वगत वो नित्य हैं। तो ये सारे दुनिया के देश, दुनिया के काल, दुनिया की वस्तुएं उसके अंदर हैं, आकाश के अंदर हैं। ये सारी पृथ्वी, ये अनंत अंतरिक्ष आकाश के अंदर हैं। ये पांचों भूत नारायण आकाश के अंदर, चारों भूत आकाश के अंदर हैं, और ये पांचों भूत परमात्मा के अंदर हैं। ये आकाश भी परमात्मा में है, ये पृथ्वी भी परमात्मा में है, जल अग्नि वायु ये परमात्मा के अंदर हैं, और परमात्मा और आप एक हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, है ना, वो उस तत्व के साथ आप एक रूप हो गए हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, आपने जान लिया वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं, सारी दुनिया के क्षेत्रों को जानने वाला, उसका नियंत्रण करने वाला जो ब्रह्म तत्व है वो मैं हूं। हाँ, तो आप एक रूप हो गए। इस शरीर से अतिरिक्त जो आत्म तत्व है वो ब्रह्म तत्व के साथ एक रूपता का अनुभव कर रहा है, और उस समय आप अनुभव क्या करेंगे, देश में मैं हूं ऐसा अनुभव करेंगे कि देश मेरे में है, काल मेरे में है। अच्छा, स्वप्न की दृष्टांत बात आप सामने रखो, आप स्वप्न में जो भी चीजें देख रहे हैं, लंबा वो देश देख रहे थे, बहुत बड़ा वो ग्राउंड देख रहे थे किलोमीटर तक, वो आपके अंदर था कि उसके अंदर आप थे? आप बैडमिंटन खेल रहे थे ना वहां, उस बड़े ग्राउंड में आप बैडमिंटन खेल रहे, कबड्डी खेल रहे, खो खो खेल रहे, घोड़सवारी कर रहे हैं, और जब आप जग जाते तो आप क्या अनुभव करते? अरे वो सारी चीजें मेरे अंदर थी। हम अनुभव तो कर रहे थे हम उसके अंदर हैं, लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता तो यही थी कि वो सारी चीजें हमारे अंदर थी। ऐसे ये सारी जो दुनिया है ज्ञानी अनुभव करता है, ये मेरे में है, मैं कौन से न स्थितो जगत। भगवान ने बोला गीता जी के दसवें अध्याय के अंत में, अरे बोले सारी जो दुनिया है वो मेरे एक देश में है, मेरे एक देश में, मेरे एक देश में, ओ मैं तो बहुत बड़ा हूं मैं, और मेरे एक देश में ये दुनिया एक कोने में, कोने में। अब वो कितनी कितनी छोटी होगी फिर? अरे बहुत छोटी है। और जब आप ज्ञान को उपलब्ध होंगे तो भगवान की अनुभूति और आपकी अनुभूति एक हो जाएगी। ये गीता का जो अनुभव है ना, ये विश्वरूप की बात जो भगवान ने बोली कि नहीं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, हाँ ये सारी दुनिया मेरे एक हिस्से में है, ये भगवान का अनुभव आपका अनुभव हो जाएगा। दुनिया के जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं उन सबका अनुभव आपका अनुभव हो जाएगा। परमपूज्य महाराज श्री का जो ब्रह्म ज्ञान है ना, वो अनुभव और आपका अनुभव एक हो जाएगा। क्योंकि तत्व का जो अनुभव है वो अलग अलग रूप से नहीं होता है। जो अनुभव आचार्य शंकर ने किया वो भी अनुभव परमपूज्य महाराज श्री ने किया, और जो अनुभव महाराज श्री ने किया वो, और आप जो करोगे या कर रहे हैं वो अलग है क्या गिरीश भाई? जो आपका वो उनका जो अनुभव वही आपका अनुभव है। तो आप भी अनुभव करोगे, ओहो ये तो सारी दुनिया मेरे अंदर है। और उसके बाद फिर वहां कोई जाना वहां आना कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ नारायण तत्व तत्व है। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो है शरीर छोड़ता है, ये बोलना हमारी दृष्टि से है। अच्छा, ज्ञानी क्या अनुभव करता है? सब कुछ मैं हूं। तो ज्ञानी को, ज्ञानी का कौन सा शरीर? ज्ञानी को पूछो आप, ये तो अपने को लगता है कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, हा? लेकिन आप ज्ञानी को पूछो आपका कौन सा शरीर है? ज्ञानी का यही शरीर क्यों? ज्ञानी यदि बोलता हो कि मैं इसी शरीर में हूं, ये शरीर मेरा, ऐसा ज्ञानी अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा शरीर है, ये कहने का जो कारण है ना, कारण, वो कारण ज्ञानी में नहीं है। इसलिए ज्ञानी क्या अनुभव करेगा, ये विश्वरूप दर्शन है ना, विश्वरूप दर्शन यही तो है, इसी ज्ञान के ऊपर खड़ा है विश्वरूप दर्शन। भगवान श्री कृष्ण परम ज्ञानी है, उनको आप ईश्वर मानो कि ना मानो, परम ज्ञान में स्थित है और वो अनुभव कर रहे हैं मैं हूं सब। वो ये भी अनुभव कर रहे हैं भगवान, अर्जुन में भी मैं हूं और दुर्योधन में भी, विदुर में भी मैं हूं, भीष्म में भी मैं हूं, और ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ। इसलिए भगवान ने बोला भी ना मेरे को कोई प्रिय है और ना मेरे को कोई अप्रिय, क्योंकि मेरी आत्मा है, मैं सब कुछ मैं हूं। एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो बहुत परेशान थे, कैंसर था, बहुत दुखी हो गए विवेकानंद जी महाराज, और विवेकानंद जी महाराज ने प्रार्थना की, भगवान आप बहुत समर्थ हैं और मां काली से आपका बहुत प्रेम है, मां काली भी आपसे बहुत प्रेम करती है, और वो दुनिया की को बनाने वाली, बिगाड़ने वाली महाकाली, आप मां से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? आप भोजन नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है, मां काली से आप प्रार्थना करो तो ये शरीर ठीक हो जाएगा, कैंसर आपका ठीक हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोला, विवेकानंद नरेंद्र, ये दुनिया के सारे सारे मुख मेरे मुख हैं, तुमको ऐसा लगता होगा कि मैं इस मुख से नहीं खा रहा हूं, अरे बोले अनंत मुखों से मैं खा रहा हूं। ओहो क्या अनुभूति है वो, बोले अनंत इन पैरों से मैं चल रहा हूं, अनंत कानों से मैं श्रवण कर, ये तो है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये जो श्रुति बोलते हजारों हजारों वहां हाथ है, हजारों हजारों मुख है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि सचमुच कहीं होगा वो, जिसके हजार हजार पैर हैं, हजार हजार हाथ हैं, मुख हैं, ऐसा कुछ होगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा विशाल कोई परमात्मा होगा, ये बहुत बड़ी अनुभूति की बात है, अनुभूति की। ज्ञानी अनुभव करता है नारायण, वो हजारों हजारों लाखों करोड़ों जो मुख हैं वो मैं हूं, हजारों लाखों करोड़ों हाथ मैं हूं, लाखों करोड़ों पैर मैं हूं, क्योंकि सर्वात्म भाव है वहां, वहां विश्व के साथ तादात्म्य। ऐसे भी जो भी आपके सामने दृश्य सत्ता है उसका मूल अधिष्ठान आत्म तत्व है, और अधिष्ठान आत्म तत्व के अतिरिक्त दृश्यमान पदार्थों की कोई सत्ता नहीं होती है। रामकृष्ण परमहंस जी अनुभव कर रहे थे, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। जब उड़िया बाबा जी महाराज जी को किसी ने चोट पहुंचाई नारायण, और उड़िया बाबा जी महाराज ने देखा लोग उसको मार रहे हैं, बाबा ने कहा रुको रुको भैया रुको, अरे बोले कौन किसको मारा, बोले ये तो निर्णय करो कि पहले किसने किसको मारा, ये निर्णय करो पहले, अरे कौन किसको मार रहा है, यहां तो द्वैत ही नहीं है, ये तो अद्वैत है, और जहां अद्वैत होता है वहां कौन किसको मारता है। चोट करने वाले व्यक्ति के बारे में भी वो बोलने लगे, नहीं नहीं इसको मत मारो, बचा लिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम इसको मारोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, बोले अरे नहीं नहीं ये भी मेरा ही रूप है, कौन किसको मारना है। और जब जड़ भरत को वो डाकुओं के सरदार डाकू लोग मां भद्री का भद्रकाली को बलि देने के लिए ले गए, उसके सामने खड़ा कर दिया मां के सामने, और वो जैसे नारायण उनकी बलि चढ़ाने वाले थे, मां भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के सबको उन्होंने मार डाला और मुक्त कर दिया जड़ भरत को। मुक्त होने के बाद जड़ भरत ने थोड़ा धन्यवाद बोला कि नित्यान को कुछ बोला नहीं बोला, अरे दूसरा होता तो धन्यवाद बोलता, लेकिन नहीं नहीं उनके मन में मारने वाले के प्रति भी द्वेष नहीं था, और बचाने वाले के प्रति भी कोई राग नहीं था, न वहां राग है और न वहां द्वेष। वो मारने वाले भी सोच रहे वो मेरा ही रूप है, कौन किसको मारता है, और वो जो बचाने वाली मां थी ना वो भी बोले मेरा ही रूप है मेरा। ये आत्मविलास है, ये सारी जो दुनिया है आत्मविलास है, आत्मविलास, ये मेरा ही रूप है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी के पास एक कापालिक आया और वो कापालिक नारायण कुछ तांत्रिक क्रिया करना चाहता था और उसको ब्रह्मज्ञानी का सिर चाहिए था। अब उन्होंने सोचा कि भाई ब्रह्मज्ञानी कौन होगा, ब्रह्मज्ञानी तो शंकराचार्य हैं, उसके दोनों उसे दोनों काम सकेंगे, एक तो हमारी साधना भी पूरी होगी और ये घोर विरोधी हमारा जो प्रतिद्वंद्वी है ये हमारे सारे धंधे बंद करने के लिए आया है, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, और हम इसको भी मार देंगे। और उन्होंने सुना भी प्रवचन था तत्वमस्यादि, अरे ये तो बोलता है हम सब एक हैं एक हैं, तो चलो हम पूछते हैं तुम ब्रह्मज्ञानी हो कि नहीं, यदि बोला है, यदि है तो भाई तुम्हारा शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होगी और ये शरीर और ये चीज बोले बाप हमको दे दो, और यदि नहीं देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है, गया हो। और जाकर के नारायण प्रणाम करके बैठ गया, बोले बहुत बड़े उद्देश्य से मैं आया हूं, तंत्र साधना करना है मेरे को और मेरे को ब्रह्मज्ञानी का सिर चाहिए, आपसे बड़ा कोई दुनिया में ब्रह्मज्ञानी नहीं है, आप हमको सिर दे दो। तो शंकराचार्य जी ने ये नहीं बोला भाई ये सिर नहीं देंगे हम, नहीं बोले ठीक है ले जाओ। शंकराचार्य जी ने बोला ये ले जाओ, वो कितने कितने उस स्थिति में उन्होंने कहा कि तुम ले तो जाओ, लेकिन तुमको मालूम है यहां तो बहुत सारे सिरे हैं यहां तो बहुत सारे हाथ हैं मेरे, बहुत सारे पैर हैं मेरे, अरे एक सिर काटने के लिए आएगा और दूसरा उसको बचाने के लिए आएगा, और जो काटने वाला और जो बचाने वाला है उसमें संघर्ष होगा और क्या पता कौन किसका सिर काटते। इसलिए तुम पहले निश्चित करो कि तुमको ये मेरा सिर मिल जाए। बोले क्या करूं मैं, अब वो हजारों हजारों शिष्य उनके बड़े बड़े राजा महाराजा शिष्य, और वो जहां रहते थे आचार्य शंकर नारायण बहुत बड़ा काफिला रहता था, बहुत बड़ा समूह, बड़े बड़े विद्वान लोग और वो राजा महाराजा के सैनिक लोग सेवा में उपस्थित रहते। शंकराचार्य महाराज ने कहा कि मैं समाधि लगा के बैठूंगा रात्रि के समय, सब लोग सो रहे होंगे और मैं समाधि में होऊंगा, उस समय तुम शरीर ये शीर ले जाओ करो, बोले कोई अनुष्ठान करो। कितनी आश्चर्य की बात है, दुनिया में केवल ये उदाहरण आपको अपने हिंदुस्तान में मिलेगा। आज वो अपने ही शीर को ले जाने के लिए बोल रहे ले जाओ, और ऐसा जैसे कि कोई आप वस्तु दे देते हो, किसी ने बोला कि आपके पास ये बाल्टी है ले जाऊं, बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ पानी भर लो, और ऐसे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि ये शीर ले जाओ, बोले तुम करो अपना अनुष्ठान। वो सचमुच आ गया, शंकराचार्य जी ने किसी को बोला थोड़ी कि वो मेरे को पास आने वाला है काटने वाला है मारने वाला है, नहीं कुछ नहीं, वो समाधि में, और वो कोई चिंतन भी नहीं है कि वो आएगा ले जाएगा, कोई चिंतन नहीं है उनको, वो समझते हैं सब अपने में है, सारी चीज अपने में, मारने वाला भी और वो नारायण मारना भी, वो शीर कटना भी, वो सब कुछ आत्मा में है, आत्मा में आत्मविलास है, और वहां रत्ती भर भी कोई शोक नहीं मोह नहीं। हाँ शोक मोह होगा, शोक मोह होगा तो वहां मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं सब कुछ हूं। वो आया रात में और जैसे ही वो काटने की तैयारी करने लगा नारायण मंत्रोच्चारण के साथ सुरक्षित करने वाला था, पूजा वूजा किया उसने, और जैसे तैयारी किया उसी समय कहते हैं पद्मपाद आचार्य शंकर के एक शिष्य थे और वो बहुत साधना करते थे नरसिंह भगवान की, और नरसिंह भगवान स्वप्न में आया और स्वप्न में आके उन्होंने बोला अरे तुम्हारा गुरु मारा जाने वाला है, कोई कापालिक आया हुआ है और वो तुम्हारे गुरु का सिर काट के लिए जाने वाला है, जब वो और उसको बचा लो, उठ के खड़े हो गए वो, और उनमें संचार हुआ नरसिंह भगवान का, जाके कापालिक को मारा और गुरु की रक्षा की, शंकराचार्य भगवान की। अच्छा, तो शिष्य ने बचाया होगा तो शंकराचार्य बड़ा धन्यवाद दिया होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं नारायण। ना बचाने वाले के प्रति धन्यवाद है और ना मारने वाले के प्रति कोई अभिशाप है। बहुत सब मेरी आत्मा है, बचा लिया वो ठीक है बेटा, वो सब एक ही में है। बचाया वो भी वही है और नहीं बचाते तो भी वही। विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवंती, ज्ञानी पुरुष नारायण अनुभव करता है मैं सब कुछ हूं, इसलिए वहां कोई उत्क्रमण नहीं है, वहां कोई जाना आना नहीं है, वहां तो केवल जानना है। ज्ञानी केवल ये जान लेता है मैं हूं व्यापक तत्व, मेरे में कहीं जाना आना नहीं है और न उसका कोई जन्म होता है। जन्म मृत्यु तो उसकी होती है जो व्यक्ति अपने को शरीर समझता है, जो व्यक्ति अपने को वासनावान समझता है, जो अपने को सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़कर मैं देखने वाला, मैं सूंघने वाला, मैं खाने वाला पीने वाला, ये शरीर लिंग शरीर ये स्थूल शरीर, ये अपनी आत्मा समझता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष में नारायण कुछ भी नहीं होता है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। अब ये आपका 17वां श्लोक, आपके 2 श्लोक बचे हैं। अब कठोपनिषद आपका पूरा होने को है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः ताम स्वाच्छरीरात् प्रहरेन् मुञ्चादि वेशिकाम धैर्येण तम विद्याच्छुक्रम अमृतम तम विद्याच्छुक्रम अमृतम। ये श्लोक भी बहुत सुंदर है, अंतिम उपदेश है। अभी इस श्लोक में अंतिम उपदेश किया है आचार्य यम ने बालक नचिकेता को। बोले वो आत्म तत्व जिसने जान लिया उसका न कोई जन्म है और न उसकी कोई मृत्यु, न वहां कोई जाना है और न वहां कोई आना है। तो बोले उसको कैसे जानना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस तत्व को जानने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी विधि है। तो यहां पर एक विधि बता दी है, वो आत्म तत्व कहां पर है और उस आत्म तत्व को कैसे जानना चाहिए, ये दोनों चीजें श्लोक में बताई हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप अनुभव करो अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा, आप अनुभव करो कि अंगुष्ठ मात्र है, अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मतलब ये अंगूठा, अंगुष्ठ मात्र परिमाण। और ये जो परिमाण की जो बात बोल रहे ना, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है, आपको केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको अनुभव करना है उस तत्व का, तो आपको एक जगह पर होने का अनुभव करना चाहिए, एक जगह पर होने का। आप पहले खड़े तो हो जाओ भाई, कोई चीज आपको देखना हो तो पहले खड़े तो हो जाओ। आप खड़े ही नहीं है तो आप कौन सी चीज देखोगे फिर? आपको कोई दूर की कोई चीज देखना हो तो आप क्या करते हैं? आप ऊंचे टीले पर जाके खड़े हो जाते हैं और वहां जाके स्थिर हो जाते हैं। अब आंखें खोलो, ओहो अरे बात, सारी दुनिया दिखाई दे रही। आप आत्म तत्व को जानना चाहते हैं तो आप उस अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले जगह पर चलो। आप अपने आप को बोलो मैं, और जब मैं की चोट जहां लगती है ना, वो स्थान ढूंढो कहां है। आप जो मैं हूं मैं हूं मैं बोलते हैं ना, तो आप मैं बोलते हैं तो इस सिर में हाथ नहीं लगाते मैं, आप पैर में हाथ नहीं लगाते हो ये मैं, ये हाथ पर मैं, ऐसा नहीं। आप क्या बोलते मैं, ये मैं जो निकलती है संवेदना मैं की, वो आपका ये स्थान है हृदय, और ये हृदय स्थान अंगुष्ठ मात्र है। आपका होने का, आपके होने की संवेदना का जो देश है ना, ये अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला हृदय, हृदय अंगुष्ठ मात्र, वो हृदय स्थान में आपकी अनुभूति होती है। तो आप अपने आप में आ जाओ पहले, फिर पहले हृदय में आ जाओ, हृदय में आप, आंख से हृदय में आओ, कान से हृदय में आओ, पैरों से हृदय में आओ, हाथों से हृदय में आओ, कामनाओं जलन विकार पांचों ज्ञानेन्द्रियों कर्मेन्द्रियों पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपने को अलग करो और अनुभव करो मैं हृदय में हूं। हाँ, और वो जो हृदय में है वो कैसे हैं, तो बोले शुक्रम तद विद्या शुक्रम, वो शुक्र हैं, शुक्र माने वही शक्ति हैं, वही तेज हैं, वही तेज हैं। और एक बार अपने हृदय में आकर उस तत्व को जानने का प्रयत्न करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप मालूम पड़ेगा ये भैया शरीर है, ये शरीर से अलग हूं मैं। शेष विषय हम लोग कल करेंगे, इस उपनिषद को कल पूरा करेंगे। और हमारे गिरीश बाबू जी ने कल विषय पूछा था तो मैंने सोचा अगले बार भागवत का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, अवधूत गीता। अवधूत दत्तात्रेय ने उपदेश किया है 24 गुरुओं को सामने रखकर, बहुत ज्ञान का प्रसंग है उसमें, व्यावहारिक ज्ञान है, वैराग्य, बहुत सारी चीजें हैं। तो अवधूत गीता दत्तात्रेय के 24 गुरु अच्छा विषय है, अगले साल हम उस पर बोलेंगे। और कठोपनिषद हम लोग कल पूरा कर लेंगे। दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं साधु महात्माओं के तरफ से, इस प्रेमपुरी के मंच के तरफ से मैं सब शुभकामनाएं देता हूं। और आपके हृदय में ज्ञान का दीप जले और अज्ञान मिटे, हमारे भीतर आनंद, उत्कर्ष, समृद्धि, सुख सब प्राप्त हो, इसी आशा के साथ ओम।